एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के साथ जैसे खेल खेला, उसे मोड़ा, तोड़ा और फिर से गढ़ा। नाम है जेम्स ऑगस्टाइन अलोयशियस जॉयस। काफी लंबा नाम है।
हाँ हाँ, जेम्स जॉयस 1882 में जन्म, 1941 में निधन।
आयरिश उपन्यासकार, कवि, आलोचक और मॉडर्न लिटरेचर के मतलब एक बहुत बड़े नाम, शायद सबसे प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण भी।
बिल्कुल, चुनौतीपूर्ण तो है ही। जब हम जॉयस की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक लेखक की बात नहीं कर रहे होते, हम एक साहित्यिक क्रांति की बात कर रहे होते हैं सही मायनों में।
अच्छा,
उनका दौर भी देखिए ना कैसा था। विक्टोरियन युग की पुरानी मान्यताएं वो सब दरक रही थी।
हाँ, और दुनिया दो विश्व युद्धों के दहलीज पर खड़ी थी।
बिल्कुल, और फिर विज्ञान, मनोविज्ञान, फ्रॉयड, डार्विन, ये सब इंसान की अपनी समझ को बदल रहे थे।
तो काफी उथल पुथल का समय था।
बहुत ज्यादा। और इसी उथल पुथल के बीच जॉयस ने भाषा और कहानी कहने के बिल्कुल नए रास्ते खोज निकाले।
और एक दिलचस्प बात ये भी है कि आयरलैंड, खासकर डबलिन शहर,
हाँ डबलिन,
जिससे वो एक तरह से भाग सी गए थे,
वही वही उनकी पूरी कला का केंद्र बना रहा। ये कैसा अजीब रिश्ता है ना, मतलब दूर जाकर भी उसी जगह से इतने गहरे जुड़े रहना।
यही तो जॉयस की खासियत है।
कमाल की बात है, वो अपने शहर की नब्ज पकड़ते हैं, उसकी आत्मा को टटोलते हैं, लेकिन एक दूरी से, एक वैश्विक नजरिए से।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जॉयस के जीवन की परतों को खोलें।
हाँ, और उनकी जो मुश्किल लगने वाली रचनाएं हैं उनके सार को समझें।
और ये भी जाने कि क्यों आज भी, मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए, उनका काम इतना प्रासंगिक और विवादास्पद भी क्यों बना हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं उस जमीन से जहां जॉयस की जड़ें थीं, उनका समय, उनका समाज। आपने विक्टोरियन युग के अंत का जिक्र किया, लेकिन आयरलैंड का अपना एक खास संदर्भ भी था उस वक्त, है ना?
वो आयरिश साहित्य एक पुनर्जागरण।
हाँ बिल्कुल,
आयरिश लिटरेरी रिवाइवल।
यीट्स थे, लेडी ग्रेगरी, सिंज, ये सब लोग आयरलैंड की पुरानी केल्टिक कहानियों, मिथकों में एक नई राष्ट्रीय पहचान ढूंढ रहे थे।
अच्छा, एक तरह का रोमांटिक आंदोलन था।
हाँ, अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास। लेकिन जॉयस को ये रास्ता कुछ जमा नहीं।
क्यों, उन्हें क्या गड़बड़ लगी इसमें?
उन्हें ये रोमांटिक थोड़ी बनावटी लगी शायद। उन्होंने इसकी जगह चुना एक चीज जिसे उन्होंने खुद कहा स्क्रूप्युलस मीननेस।
स्क्रूप्युलस मीननेस, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब डबलिन के जीवन की जो असलियत थी, जो कड़वाहट थी, जो ठहराव था, उसको बिना किसी लीपापोती के दिखाना, बिल्कुल नग्न सच्चाई।
अच्छा,
उन्होंने यूरोप के मॉडर्निज्म को चुना, न कि सिर्फ आयरिश राष्ट्रवाद वाली धारा को। मतलब वो उस वक्त की मुख्य धारा से अलग ही चल रहे थे।
हाँ, काफी हद तक।
डबलिन उस समय ब्रिटिश राज के अधीन था, राजनीतिक तनाव भी होंगे, फीनिक्स पार्क हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई थी 1882 में।
बिल्कुल, वो माहौल ही ऐसा था, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक पिछड़ापन और कैथोलिक चर्च का भी बहुत दबदबा था। इन सब ने मिलकर जॉयस के अंदर स्वतंत्रता की एक तीव्र इच्छा पैदा की होगी।
उन्हें लगा होगा कि सच्ची कला के लिए इन बंधनों से मुक्त होना जरूरी है,
चाहे वो बंधन देश का हो, धर्म का या परिवार का।
हाँ, इसीलिए उनका बाद का जो स्वैच्छिक निर्वासन था ना, वो सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, वो एक कलात्मक जरूरत थी उनके लिए।
और इसी दौर में यूरोप में दूसरे बड़े लेखक भी थे, टीएस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ,
मार्सेल प्रूस्ट।
हाँ, क्या जॉयसन से प्रभावित थे या अपनी अलग ही धुन में चल रहे थे?
देखिए, उन सब में एक बात तो कॉमन थी, वे सभी कहानी कहने के पुराने तरीकों से ऊब चुके थे।
हाँ, और इंसान के मन की भीतरी दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, भाषा के साथ प्रयोग, ये सब चल रहा था।
तो फिर जॉयस अलग कैसे थे?
जॉयस शायद सबसे आगे निकल गए, खासकर भाषा और संरचना के मामले में। उनका रास्ता सबसे ज्यादा रेडिकल था, सबसे कट्टरपंथी।
अच्छा,
और फिर पहले विश्व युद्ध ने तो जैसे स्थापित मान्यताओं की चूलें ही हिला दी। प्रगति का जो एक भ्रम था वो टूट गया।
हाँ, उसका असर तो सब पर पड़ा होगा।
बिल्कुल, और जॉयस के काम में जो बिखराव, जो अलगाव दिखता है ना, उसमें उस युद्ध की छाया भी महसूस होती है।
ये तो हुआ बाहरी माहौल। उनके अपने जीवन की शुरुआत कैसी रही? सुना है उनके पिता काफी रंगीन मिजाज थे।
हाँ, जॉन स्टैनिस्लॉस जॉयस एक दिलचस्प किरदार थे, अच्छे गायक थे, मजाकिया थे लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल गैर जिम्मेदार और शराब के भी आदि थे।
तो परिवार की आर्थिक स्थिति?
वो धीरे धीरे अमीरी से गरीबी की तरफ बढ़ी। माँ मैरी जेन काफी धार्मिक थीं और उनका जॉयस पर गहरा असर पड़ा।
ये विरोधाभास दिलचस्प है, पिता की दुनियादारी और माँ की आध्यात्मिकता।
हाँ, और ये कहीं ना कहीं जॉयस के लेखन में भी झलकता है।
लेकिन गरीबी के बावजूद उनकी पढ़ाई तो अच्छी जगह हुई, जेसुइट स्कूलों में, है ना?
हाँ, क्लोनगोव्स वुड कॉलेज, फिर बेल्वेडियर कॉलेज। उनकी अकादमिक प्रतिभा गजब की थी।
अच्छा।
नजर बचपन से ही खराब थी, पैसों की तंगी भी थी, फिर भी वो हमेशा अव्वल रहे।
जेसुइट शिक्षा का क्या असर हुआ उन पर?
उसने उन्हें तर्क करना सिखाया, भाषा पर पकड़ मजबूत की, लेकिन शायद साथ ही उस व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह भी पैदा किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में पहुंचकर तो जैसे उनके पंख निकल आए। उन्होंने भाषाएं सीखी, इब्सन जैसे आधुनिक नाटककारों को पढ़ा
और अपने कलात्मक सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए।
बिल्कुल। और यहीं उनका आयरिश राष्ट्रवाद और चर्च से मोहभंग और गहरा हुआ। वो अपनी राह तलाश रहे थे
और यहीं उनकी मुलाकात हुई नोरा बारनाकल से। वो तारीख 16 जून 1904, जिसे दुनिया आज ब्लूम्स डे के नाम से जानती है।
हाँ, ये कितनी अद्भुत बात है ना, एक निजी पल को साहित्यिक अमरता मिल गई।
नोरा कौन थी, मतलब उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है?
वो गोल्वे से आई एक साधारण लड़की थी, एक होटल में चैम्बरमेट का काम करती थी। शायद उनकी इसी सादगी, इसी जमीनी हकीकत ने जॉयस को आकर्षित किया।
और उसी साल अक्टूबर में वो नोरा के साथ आयरलैंड छोड़कर चले गए।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था, अपनी जड़ों को छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर जाना। लेकिन जॉयस के लिए ये कलात्मक आज़ादी की कीमत थी, वो इसे जरूरी मानते थे।
उनका ये निर्वासन का जीवन ये कैसा था? ट्रिएस्टे, ज्यूरिख, पेरिस, क्या उन्हें वो आज़ादी मिली जिसकी तलाश में वो निकले थे?
आज़ादी तो मिली पर आसान नहीं था, कीमत चुकानी पड़ी, लगातार पैसों की तंगी रही।
अच्छा।
बर्लेट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाकर गुजारा करना पड़ा और वो अपने लेखन से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, इसलिए व्यावसायिक सफलता तो कोसों दूर थी।
तो फिर काम कैसे चला?
कुछ संरक्षक थे जैसे हैरियट शॉ वीवर, उन्होंने उनकी बहुत मदद की आर्थिक रूप से, वरना शायद वो लिख ही नहीं पाते।
परिवार भी था साथ में?
हाँ, परिवार भी बड़ा, बेटा जियोर्जियो, बेटी लूसिया। बाद में लूसिया की मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया, उसने उन्हें बहुत दुख दिया। ये एक ट्रेजेडी थी।
यानी निजी जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई थी।
बिल्कुल।
लेकिन इसी दौरान उनकी वो तकनीकें विकसित हुईं जिन्होंने साहित्य का चेहरा ही बदल दिया। आपने कहा चेतना प्रवाह और मिथकीय पद्धति।
हाँ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं।
ये चेतना प्रवाह या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये असल में है क्या? सुनने में बड़ा भारी लगता है।
भारी नहीं है, देखिए, इसका सीधा सा मतलब है पात्र के दिमाग में जैसे विचार चल रहे हैं ना, कभी अधूरे वाक्य, कभी अचानक कोई याद आ गई, भावनाओं का उतार चढ़ाव, उसी बेतरतीब ढंग से जैसे वो असल में होते हैं उन्हें कागज पर उतार देना।
अच्छा, जैसे कोई दिमाग का लाइव स्ट्रीम दिखा रहा हो।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पाठक को सीधे पात्र के मन के अंदर ले जाता है, आप जैसे उनके साथ ही सोच रहे हो। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये पाठक को किरदार से जोड़ने का एक बिल्कुल नया गहरा तरीका था।
ये तो कमाल है। और दूसरी चीज आपने कही, मिथकीय पद्धति, ये क्या है?
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका मास्टरपीस यूलिसिस।
हाँ।
उन्होंने क्या किया, डबलिन में गुजरने वाले एक बिल्कुल साधारण दिन 16 जून 1904 की कहानी को होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य ओडिसी के ढांचे पर कस दिया।
ओडिसी? वो ओडिसियस वाली कहानी?
हाँ, वही। यूलिसिस का मुख्य पात्र है लियोपोल्ड ब्लूम, एक साधारण विज्ञापन एजेंट। वो उस दिन डबलिन में भटकता है, ठीक वैसे ही जैसे ओडिसियस सालों तक भटका था अपनी यात्रा पर।
अच्छा।
इसे जॉयस ने यह दिखाया कि आज की इस मामूली सी दिखने वाली जिंदगी में भी वही प्राचीन मिथकों जैसा संघर्ष, वैसी ही यात्राएं और वैसा ही हीरोइज्म छुपा सकता है।
वाओ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी को एक एपिक दर्जा दे दिया।
बिल्कुल, ये आधुनिक जीवन को एक कालजयी गहराई देता है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था।
कमाल का विचार है, और इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल हमें उनकी किताबों में दिखता है। तो अगर किसी को जॉयस पढ़ना शुरू करना हो, कहाँ से करें? क्या डबलिनर्स सही रहेगा?
हाँ, मेरे हिसाब से डबलिनर्स 1914 एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये 15 कहानियों का संग्रह है। और ये डबलिन शहर के एक तरह के नैतिक और आध्यात्मिक लकवे को दिखाता है। भाषा काफी सीधी है, यथार्थवादी है।
अच्छा, तो समझने में आसान है।
हाँ, बाकी कामों के मुकाबले, लेकिन हर कहानी में एक एपिफेनी, एपिफेनी का क्षण आता है।
एपिफेनी वो क्या होता है?
एपिफेनी मतलब एक मामूली सी घटना या बातचीत से अचानक किसी गहरी सच्चाई का एहसास हो जाना, एक आ मोमेंट जैसा।
अच्छा।
जॉयस मानते थे कि जिंदगी के बड़े सच अक्सर छोटी साधारण चीजों में छुपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। और इसमें द डेड नाम की कहानी है, वो तो विश्व साहित्य का नगीना मानी जाती है।
ओके, तो डबलिनर्स के बाद फिर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1916, ये तो कुछ कुछ उनकी अपनी कहानी लगती है नाम से।
हाँ, ये अर्ध आत्मकथात्मक है, इसे कुंसलर रोमान कहते हैं, यानी कलाकार के बनने की कहानी। इसका नायक है स्टीफन डेडलस, यही पात्र हमें यूलिसिस में भी मिलता है। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे स्टीफन अपने परिवार, धर्म और देश के बंधनों को तोड़कर एक कलाकार के रूप में खुद को गढ़ता है।
अच्छा।
और खास बात यह है कि जैसे जैसे स्टीफन बड़ा होता है, उसकी चेतना विकसित होती है, उपन्यास की भाषा और शैली भी बदलती जाती है।
कैसे?
बचपन की सीधी साधी भाषा से शुरू होकर जवानी के जटिल विचारों और फिर चेतना प्रवाह तकनीक तक पहुंचती है। ये जैसे यूलिसिस के लिए एक तैयारी है। यहीं स्टीफन वो मशहूर पंक्ति कहता है, मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा जिसमें मेरा अब विश्वास नहीं है, चाहे वो खुद को मेरा घर, मेरा वतन या मेरा चर्च कहे।
हाँ, ये तो बहुत फेमस है, जैसे हर उस कलाकार का नारा बन गया जो अपनी राह खुद बनाना चाहता है।
बिल्कुल।
और इसके बाद आता है वो महाग्रंथ यूलिसिस 1922। इसको लेकर तो बहुत डर भी है लोगों में और बहुत आकर्षण भी। क्या ये वाकई उतना मुश्किल है जितना कहा जाता है?
मुश्किल तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अनुभव है, सिर्फ एक किताब नहीं।
एक अनुभव?
हाँ, सोचिए, सिर्फ एक दिन की कहानी है, 16 जून 1904, लेकिन उसमें पूरा डबलिन शहर, पूरा मानव अनुभव, सब कुछ समाया हुआ लगता है।
अच्छा, पात्र कौन कौन है मुख्य?
तीन मुख्य पात्र हैं, लियोपोल्ड ब्लूम, वो यहूदी विज्ञापन एजेंट, स्टीफन डेडलेस, वही युवा बुद्धिजीवी पोर्ट्रेट वाला, और मॉली ब्लूम, लियोपोल्ड की पत्नी, जो एक गायिका है।
और इसमें वो होमर वाला ढांचा भी है?
हाँ, ओडीसी का ढांचा तो है ही, साथ में जॉयस ने भाषा और शैली के इतने प्रयोग किए हैं कि हर अध्याय एक नई चुनौती जैसा लगता है।
जैसे?
कहीं बिल्कुल सीधी चेतना प्रवाह है, कहीं पूरा अध्याय नाटक के रूप में लिखा गया है, कहीं संगीत की लय पर आधारित है, कहीं अंग्रेजी गद्य के पूरे इतिहास की नकल उतार दी है।
अरे बाप रे।
हाँ, और विषय भी, शरीर, सेक्स, मन की अंधेरी गलियां, सब कुछ बिना किसी पर्दे के सामने आता है। इसीलिए इसे शुरू में प्रतिबंधित भी किया गया था। मॉली ब्लूम का वो आखिरी एकालाप, वो तो बहुत प्रसिद्ध है ना?
हाँ।
वो 40 पेज का एकालाप, बिना किसी फुल स्टॉप, कॉमा के।
40 पेज?
हाँ, जिसमें मॉली बिस्तर पर लेटे लेटे अपने जीवन, अपने प्रेम, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है, और उसका अंत होता है उन शब्दों से, हाँ मैंने कहा हाँ, मैं करूंगी हाँ।
Yes, I said yes, I will.
जीवन की तमाम मुश्किलों और निराशाओं के बावजूद ये जीवन को, प्रेम को, संभावनाओं को एक जोरदार हाँ है। ये अद्भुत है सही में।
यूलिसिस के बाद भी जॉयस रुके नहीं। फिनिगन्स वेक 1939, वो तो और भी ज्यादा प्रयोगात्मक माना जाता है।
हाँ, फिनिगन्स वेक तो उसे समझना एक अलग ही महाकाव्य है। 17 साल लगे उसे लिखने में।
17 साल?
जी, ये जैसे सपनों की भाषा में लिखा गया है।
सपनों की भाषा मतलब?
पढ़ी है
तो इसे पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा।
मुश्किल क्या, लगभग नामुमकिन लगता है पहली बार में। इसकी कहानी भी चक्रीय है, सर्कुलर, जहां किताब खत्म होती है वहीं से पहला वाक्य फिर जुड़ जाता है।
अरे,
ये मानव इतिहास, मिथकों और अचेतन मन की गहराइयों में उतरता है। जॉयस ने खुद मजाक में कहा था इसके बारे में।
क्या कहा था?
कि मैंने इसमें इतनी पहेलियां और गूढ़ बातें डाल दी हैं कि प्रोफेसर्स सदियों तक उलझे रहेंगे कि मेरा मतलब क्या था, और यही अमरता पाने का मेरा तरीका है।
कमाल है।
पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने या पढ़ें तो उसकी भाषा में एक संगीत है, एक लय है।
तो अगर हम जॉयस के मुख्य योगदानों को समेटना चाहें, एक तो चेतना प्रवाह हो गया।
हाँ।
दूसरा वो मिथकीय पद्धति।
बिल्कुल।
भाषा के साथ क्रांतिकारी प्रयोग और विषयों की बेबाकी, यही सब उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं।
बिल्कुल, उन्होंने उपन्यास की संभावनाओं का जैसे विस्तार कर दिया। चेतना प्रवाह ने पात्रों को वो मनोवैज्ञानिक गहराई दी जो पहले नहीं थी। मिथ्यकीय पद्धति ने साधारण जीवन को महाकाव्य का दर्जा दिया। भाषा के साथ उनके प्रयोगों ने दिखाया कि शब्दों से क्या कुछ रचा जा सकता है, उनकी ताकत क्या है, और उनकी बेबाकी ने साहित्य को सेंसरशिप और विक्टोरियन नैतिकता के बंधनों से आजाद करने में बहुत मदद की।
और उनका असर किन लेखकों पर पड़ा?
अरे लिस्ट बहुत लंबी है, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम फॉकनर, सैमुअल बेकेट से लेकर बाद में सलमान रुश्दी, डेविड फॉस्टर वालेस तक, अनगिनत लेखकों को उन्होंने प्रभावित किया।
ये हैरानी की बात है कि इतने बड़े, इतने प्रभावशाली लेखक को अपने जीवन काल में कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार तक नहीं मिला उन्हें।
हाँ, ये एक विडंबना है, उनका काम अक्सर विवादों में रहा, प्रतिबंधित हुआ।
अच्छा,
पहचान मिली पर धीरे धीरे मिली। इज़रा पाउंड, टीएस इलियट जैसे साथी लेखकों ने उनकी प्रतिभा को बहुत पहले पहचान लिया था। सिल्विया बीच जैसी प्रकाशक ने हिम्मत दिखाकर यूलिसिस को छापा जब कोई छापने को तैयार नहीं था।
और वो संरक्षक हैरियट शॉ वीवर?
हाँ, उनका जिक्र जरूरी है। उनके आर्थिक समर्थन के बिना तो शायद जॉयस लिख ही नहीं पाते। बल्कि हुआ ये कि यूलिसिस पर जो मुकदमा चला अमेरिका में,
हाँ,
और फिर 1933 में जज वुल्सी का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने इसे अश्लील नहीं बल्कि कला का एक नमूना माना, उस फैसले ने जॉयस को और ज्यादा मशहूर कर दिया।
तो विवादों से भी प्रसिद्धि मिली।
हाँ, कह सकते हैं।
और आज जॉयस की क्या जगह है साहित्य में?
आज वो निर्विवाद रूप से 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
उनका असर सिर्फ साहित्य तक ही सीमित है या और भी कहीं है?
नहीं, साहित्य से आगे भी है। भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, इन सब पर उनका प्रभाव दिखता है। दुनिया भर में 16 जून को ब्लूम्सडे मनाया जाता है।
हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लोग डबलिन की सड़कों पर घूमते हैं उस दिन।
बिल्कुल, अकादमिक जगत में जॉय स्टडीज एक पूरा का पूरा क्षेत्र है।
क्या?
और कमाल की बात देखिए,
क्या
आज का जो डिजिटल युग है जहाँ ध्यान बटा हुआ है, सब कुछ टुकड़ों में है, ऐसे में जॉयस की वो गैर रेखीय कथा, विचारों का वो मुक्त प्रवाह, ये सब और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, कुछ और रोचक बातें जॉयस के बारे में जो कम लोग जानते हो। उनकी आंखों की समस्या के बारे में हमने बात की।
हाँ, वो लगभग अंधे हो गए थे आखिर में। 2 दर्जन से ज्यादा आंखों की सर्जरी हुई, बहुत तकलीफ सही उन्होंने। एक और बात, संगीत से उन्हें बेहद लगाव था।
वाह,
वो खुद प्रशिक्षित गायक थे और उनके गद्य में, आप पढ़ेंगे तो महसूस होगा, एक संगीत हमेशा रहता है।
अच्छा, उनकी पहली किताब का नाम भी चेंबर म्यूजिक था।
हाँ बिल्कुल, वो शीर्षक भी इसी ओर इशारा करता है। और ये बात कि अपनी कला के लिए उन्होंने निर्वासन चुना, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा डबलिन से जुड़े रहेंगे, ये भी कम रोचक नहीं।
उनका वो कथन याद आता है जो आपने बताया था स्टीफन डेडलिस के जरिए यूलिसिस में, इतिहास एक दुस्वप्न है जिससे मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ।
हाँ, शायद वो अपने अतीत और अपने देश के इतिहास से इसी तरह जूझ रहे थे लगातार।
तो अगर कोई आज जॉयस को पढ़ना शुरू करना चाहे, फाइनल सलाह क्या होगी? सीधे यूलिसिस उठा लें?
नहीं नहीं, मेरी सलाह होगी शुरुआत डबलिनर से करें।
ठीक है,
कहानियाँ छोटी हैं, भाषा ज्यादा सीधी है और जॉयस की जो मुख्य थीम है वो समझ आने लगते हैं। फिर ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन पढ़ें। वो आपको उनकी शैली के विकास से परिचित कराएगा, एक पुल का काम करेगा यूलिसिस तक।
और फिर यूलिसिस।
हाँ, फिर अगर हिम्मत और समय हो तो यूलिसिस की दुनिया में गोता लगाएं, लेकिन धैर्य रखें, ये जरूरी है। हर चीज समझने की कोशिश ना करें पहली बार में, बस भाषा के प्रवाह और पात्रों के साथ बहते जाएं।
उनकी किताबों पर फिल्में या नाटक भी बने हैं क्या? क्या उनकी जटिलता को पर्दे पर उतारना संभव हो पाया है?
ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उनका ज्यादातर काम किरदारों के मन के अंदर चलता है।
सही बात है।
जॉन हेस्टन की फिल्म द डेड 1987 काफी सराही गई थी क्योंकि उसने कहानी की आत्मा को पकड़ा था। यूलिसिस पर भी फिल्म बनी 1967।
अच्छा।
महत्वाकांक्षी थी पर उपन्यास की परतों को पूरी तरह समेट नहीं पाई। थिएटर और रेडियो पर शायद ज्यादा सफल प्रयोग हुए हैं।
अच्छा।
क्योंकि आवाज और संगीत वो जॉयस की भाषा की लय और आंतरिकता को बेहतर ढंग से पकड़ पाते हैं।
तो अंत में अगर हम सोचें जॉयस हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या विरासत छोड़ गए वो?
वो हमें सबसे पहले तो भाषा की ताकत और उसकी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम सच में शब्दों के जरिए अपनी चेतना, अपने अंदरूनी संसार को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं?
ये बड़ा सवाल है।
जॉयस ने इसकी कोशिश की, वो सीमाओं तक गए। शायद ये खोज हमेशा अधूरी रहेगी, लेकिन ये कोशिश जरूरी है।
और दूसरी बात, हाँ,
वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे एक कलाकार अपने परिवेश से, अपनी जड़ों से, चाहे कितना भी विद्रोह करे, अंततः उसी से अपनी कला का कच्चा माल पाता है। डबलिन जॉयस के लिए एक प्रयोगशाला था जहां उन्होंने आधुनिक मनुष्य की स्थिति को परखा।
सचमुच एक लेखक जिसने न सिर्फ साहित्य बदला बल्कि हमें अपने मन और अपनी भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया।
बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे सोचने के तरीके में भी जिंदा है।
बहुत खूब, इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।